ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष के लाभ और उसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा मनोज नीसरी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
आयुष, आज ये नाम देश के 95% से ज्यादा लोगों को पता है। आयुष यानी प्राचीन परंपरागत चिकित्सा पद्धति, आयुष मतलब योग और मेडिसिन की पढ़ाई, इस नाम से सब परिचित हैं और धीरे धीरे हम आयुर्वेदा और प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति की जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत से लोगों को देश में और विदेशों में भी इस प्रणाली ने स्वस्थ किया है और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया है। आज इस बारे में हम बात करेंगे हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी हैं। डॉक्टर तनुजा, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
शुरू करते हैं, सबसे पहले आयुष के बारे में बताएं, क्योंकि हमें जो मालूम है कि एक मंत्रालय के रूप में 9 नवंबर 2014 को इसका गठन किया गया था एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय के तौर पे, तो ये आज कितना कारगर साबित हुआ है पिछले 10 वर्षों में?
आयुष ये एक एक्रोनिम है और वो 6 जो चिकित्सा पद्धति है इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की उसको मिला के ये आयुष हुआ है, जिसको आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और अभी सोवारिपा, सिद्ध के साथ सोवारिपा को भी रिसेंटली उसमें ऐड किया है और उसका सबके मिलके एक आयुष मंत्रालय 2014 में उसकी विशिष्ट स्थापना की और भारत वर्ष में एक जिसको चिकित्सा पद्धति एंड वेल एस्टेब्लिश हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जिसमें हो, जिसमें रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर भी है, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ भी है, औषधि भी स्टैंडर्डाइज है और लेने वाले लोग भी है, ऐसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रेगुलेशन से लेके ऐसी की चिकित्सा, समग्र चिकित्सा पद्धति है। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है इससे ये पता चल रहा है कि मोर देन 90% भारत के जो लोग है वो प्राइमरी केयर के लिए, चाहे वो नानी माँ के नुस्खे भी हो, जड़ी बुटिया हो, लेकिन उसको एक स्टैंडर्डाइज पद्धति से देना ये आयुष मंत्रालय का फर्ज है और हर कोई उसको एक प्राइमरी केयर के लिए तो इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसके साथ साथ जो आयुष के 700 इंस्टीट्यूशन है, 23,000 से भी ज्यादा डिस्पेंसरी सभी राज्यों में है, तो ये एक हेल्थ केयर डिलीवरी करने का बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कैंसर से लेके कोविड तक और कॉमन कोल्ड से लेके जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, मेंटल हेल्थ, डिजनरेटिव डिसऑर्डर, इन सभी में एक समग्र चिकित्सा पद्धति के रूप में भी ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस ये सॉल्यूशन दे रहा है, अनुसंधान किया है, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेस लोगों तक पहुंचा रहा है।
डॉक्टर तनुजा, अभी आपने बात की प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में ये काफी आगे आ रहा है, लेकिन सेकेंडरी या टर्शियरी चिकित्सा की बात अगर करें तो क्या उसमें भी आयुष इतना ही कारगर साबित हो रहा है?
बिल्कुल, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जिसकी मैं निदेशक हूँ, वो आयुष का पहला टर्शियरी केयर सेंटर है, जैसे एम्स फॉर आयुर्वेद है, तो उसमें 44 स्पेशलिटी एरियाज में डायबिटीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डायबिटीज जैसे मोटापा या जिसको गठिया बात कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर, डीजनरेशन, ये सभी डिसऑर्डर्स, इन सभी व्याधियों में ये मूलतः ठीक करना और एक समग्र रूप में चिकित्सा पद्धति से अपनाना ये इसका मुख्य दायित्व है और ऐसे बीमारियों में ये बहुत ज्यादा कारगर है और एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड वे में, जैसे चिकित्सा तो हम पंचकर्म, औषधि, आहार, लाइफस्टाइल में बदलाव, योग, मेडिटेशन, ऐसे पूरा एक साथ व्यक्ति को प्रकृति मिजाज देख के करेंगे और उसके साथ साथ जो इसकी जांच है, जैसे डायग्नोसिस है वो एलोपैथी जो करती है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक वही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनको डायबिटीज है, हमारी रोग पद्धति है जानने की, मापदंड है, फिर भी HbA1c, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी, ये देख के हर किसी को एक एहसास हो जाता है कि मेरी पहले 7.5 था, अभी कम हो गया, 6.5 हो गया, नॉर्मल हो गया। और हमारे यहाँ ऐसे हजारों मरीजों का डेटा है और पिछले 5 साल में ऑल इंडिया एक ही संस्था में 25 लाख पेशेंट का डेटा है और ऑल ओवर इंडिया में तो 8 करोड़ व्यक्तियों का ऐसे डेटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास, उससे भी ज्यादा, जो चिकित्सा पद्धति बीमारों का नाश करना, उसी का भी जांच हम करके उसके आंकड़े भी बता सकते हैं कि ये कारगर है।
जी डॉक्टर तनुजा, आपने बात की शुगर की, और शुगर आज की स्थिति में पूरी दुनिया में बहुत लोगों को फैला हुआ है, भारत में भी अगर आप आम लोगों को देखें तो शुगर की बीमारी से कहीं ना कहीं कोई पीड़ित है और उसकी दवा लेनी पड़ती है। लेकिन आपने जो कहा कि A1C जो है ये 7.5 से 6 तक भी आया, तो इसे हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज माने या मेडिसिन लेकर उसको कम किया गया?
जी, इसका दोनों भी है। प्रतिबंधात्मक प्राइमरी प्रिवेंशन जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जिसको 6.5 के आजू बाजू में है, उनके लिए तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन जिनको पढ़ा हुआ है उन्होंने भी औषधि, पंचकर्म और आहार और ये सबका एक ऐसे सटीक उपचार किया तो उसका बेहतरीन कंट्रोल होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी होती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है और धीरे धीरे ये रिवर्सल की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो दवा तुरंत बंद करके किसी को ले, लेकिन मॉनिटर करना, अच्छे संतुलित व्यायाम, नियमित आहार लेना और औषधि लेके एक मॉनिटरिंग करना, ये इसका बहुत जरूरी है। लेकिन ये हो सकता है अगर सभी संतुलित अच्छे स्टैंडर्डाइज वे में हम अगर चिकित्सा ले तो ये ठीक हो जाता है।
डॉक्टर तनुजा, आपने बात की एम्स आयुर्वेदा की, एम्स की तर्ज पर ही एम्स आयुर्वेदा भी खोला गया है, ये कितने सेंटर्स हैं एम्स आयुर्वेदा के पूरे भारत में?
पूरे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर 13 नेशनल इंस्टीट्यूशन है और 700 मेडिकल इंस्टीट्यूशन आयुष के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये एम्स आयुर्वेदा है जिसमें अनुसंधान मतलब रिसर्च भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ट्रेनिंग भी होता है, MD, MS, ऐसा PhD भी होता है और टर्शरी केयर एक हॉस्पिटल भी है, पेशेंट केयर। तो ये दिल्ली में है और ऐसा ही हमारा एक जो एक्सपांशन कैंपस है मतलब गोवा में एक बहुत बड़ा 50 एकड़ में इससे भी 6 गुना बड़ा ऐसा हमारा कैंपस अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया और उसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है और वहाँ भी रोजाना तकरीबन 700 से भी ज्यादा मरीज एक ही साल में आने लगे हैं। ऐसा ही एक सेंटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले 4 महीने में पहले खुला था, सफदरजंग हॉस्पिटल जो एलोपैथी का हॉस्पिटल है उसमें इंटीग्रेटेड वे में आयुष की भी इंटीग्रेशन हमने किया है और केवड़िया जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ भी है, लबासना मसूरी उसमें भी है और धीरे धीरे करके सभी रीजन में इसका बढ़ोतरी करने का सरकार का इरादा है।
डॉक्टर तनुजा, हमने आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की बात की जो आयुष के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके अलावा योग के बारे में भी हमें मालूम है, मोरारजी भाई देसाई जो योग संस्थान है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर बहुत लोग योगा सिखा रहे हैं और योगा को तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वजह से पूरी दुनिया में जाने जाने लगा है और हम अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति सिद्धा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये क्या है?
ये यूनानी चिकित्सा पद्धति में मूलतः सभी चिकित्सा पद्धति ट्रेडिशनल सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम है, एक मिडिल ईस्ट में इसका ज्यादा परिचित है, लेकिन भारतवर्ष में भी यूनानी के जो प्रिंसिपल थ्योरी और प्रैक्टिसेस ये भी कुछ यूनानी में पंचकर्म प्रोसीजर है उसका भी पेन मैनेजमेंट में उपयोग होता है और उसमें भी कुछ मेडिसिन है वो भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर में उसका भी प्रयोग होता है। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये विशेषतः सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विशेषतः तमिलनाडु में प्रचलित है, उसमें हर्बो मिनरल्स ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन उसका भी जैसे आयुर्वेद है वैसे ही एक ट्रेडिशनल सिस्टम उस प्रदेश के अनुसार उसको नाम दिया गया है। मूलतः उसका एक उद्देश्य है नेचुरल प्राकृतिक वे में हीलिंग प्रैक्टिसेस है और चिकित्सा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है और वो भी सही कंडीशन जैसे स्किन डिसऑर्डर है उसमें वो कारगर है।
डॉक्टर तनुजा, मरीजों को जागरूक करने के लिए, वैसे मरीज जो आयुर्वेद की तरफ आकर्षित होते हैं जाते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारी कंपनियों की दवाएं बाजार में आ गई हैं और उसको प्रचारित किया जाता है, लेकिन उसका या तो कोई लाभ नहीं होता या कई बार उसमें मिलावटी भी सामान देखने को मिलता है दवाइयों में, तो ऐसे में आम लोग जो हैं उनको जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या आयुर्वेद की दवा ओवर द काउंटर जाके खरीदी जाए या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही ली जाए?
जी, आयुर्वेद में ये एक सही बात आपने कहा कि जिसको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे होम रेमिडीज इस नाम से आयुर्वेद को अपनी प्राचीन पद्धति है घर घर में बसी है करके आयुर्वेद को सेफ कहा गया है, लेकिन वो जो हमारे आहारीय पदार्थ है जिसमें स्पाइसेस है वो भी सलाह के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन वो एक सेफ घर में हम ले सकते हैं। लेकिन कई सारी मतलब 8700 से भी ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मतलब वैद्य की ये सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। और जो आपने औषधि के उत्पादकों की बात करी तो आयुर्वेद में 10,000 से भी ज्यादा आयुष मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो एक्ट के तहत GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिनके पास उसका लाइसेंस है, और जैसे एग मार्क होता है एग्रीकल्चर मार्क, वैसे GMP सर्टिफाइड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को ही लेना है, वो OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है। तो जहाँ लाइसेंस है मतलब एक नियम के अनुसार कानून के अनुसार हर एक GMP सर्टिफाइड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मार्केट में ला सकता है, FDA उसको नहीं तो रोकथाम कर सकती है। उनको मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट उसमें क्या घटक है वो लिखना जरूरी है, किसके लिए काम है, किसके अनुपात किस अनुपात में वो है और किसके लिए इसका उपयोग होता है, ये सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो डोसियर है वो लेबलिंग प्रैक्टिसेस भी होती है। तो मैं हर एक देशवासियों को ये कहूंगी कि जो GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादक है उन्हीं से ही औषधियां ले प्रोडक्ट्स ले और वैद्यकीय सलाह के अनुसार ले। तो मुझे लगता है कि कई सारे बीमारियों की तोड़ इसमें है, लेकिन ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। तो जैसे एलोपैथी है वैसे ही आयुर्वेद में इलाज है, लेकिन वो वैद्यकीय सलाह के अनुसार लेंगे तो ही इसमें और अच्छा असर मिलता है, नहीं तो दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अपने इस मंच से ये भी लोगों को बताना चाहेंगे क्योंकि आयुर्वेद की दवाएं आप कहीं देखें किराने की दुकान पे पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती हैं, तो आपकी सलाह ये है कि वो कम से कम GMP सर्टिफाइड जो दवाएं हैं वो खरीदें या वैद्य की डॉक्टर की सलाह लेने के बाद वो दवाएं लें और सही जगह से लें।
जी बिल्कुल।
डॉक्टर तनुजा एक सवाल और भी है कि क्या आयुर्वेद के सेकेंडरी टर्शरी में सर्जरी का भी प्रावधान है या केवल दवाओं पर निर्भरता है?
ये भी बहुत आपने सही कहा कि आयुर्वेद में जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें शल्य ये हजारों साल से उसकी कैटेगरी की है और सुश्रुत संहिता को भी फादर ऑफ सर्जरी कहा है, मॉडर्न सर्जरी। तो आयुर्वेद में धन्वंतरी संप्रदाय सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा ये बहुत सटीक वर्णन है, उसके जो टेक्निक्स और उपकरण जो यंत्र ये भी उसमें है, लेकिन कुछ प्रकार की सर्जरी जिसको पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स अग्निकर्म ये भी उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन एनोरेक्टल सर्जरी पाइल्स और फिस्टुला इसके लिए बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं होता, ऐसी सर्जरी आयुर्वेद में और अच्छी कही है। और अभी मॉडर्न एनास्थेटिक्स के साथ अगर सर्जरी करे तो हमारे भी सर्जरी वो लीगली अप्रूव्ड है और इट इज सेड दैट इट कैन बी प्रैक्टिस टू द एक्सटेंट टू विच इट हैज बीन टॉट, जो ये स्किल है वो सर्जन जित हद तक कर सकते वो करने के लिए कायदा कानून से उसको कर सकते हैं। और ऑल इंडिया में एक मॉड्यूलर सर्जिकल यूनिट है, उसमें कई प्रकार की हर्निया गॉल ब्लैडर ऐसे कई प्रकार की सर्जरियां भी होती है जो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, वो सर्जन का अधिकार है, वो स्पेशलिस्ट सर्जन का हक है उसके लिए नहीं। लेकिन हम जो जनरल सर्जरी के प्रिंसिपल्स है और जनरल सर्जरी सभी आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सक जिन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर नहीं करता जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में की है वही ये कर सकता है, तो ये भी एक स्पेशलिटी है। और जहाँ स्पेशलिटी है वहाँ बिल्कुल सर्जिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वहाँ ये जरूर होता है।
जी डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आयुष के लाभ और उसके महत्व पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसरी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है AIRNSTTalks@gmail.com।